दिन भर 31 अगस्त दिन गुरुवार सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। बेनजीर भुट्टो हत्याकांड में दो लोगों को सजा, 5 बरी, परवेज मुशर्रफ को अदालत ने भगोड़ा घोषित किया।
एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उन्हें बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन के केस में ऑब्सकेंडर करार दिया है, इश्तहारी करार दिया है और इसके अलावा उनके जितनी भी प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में उनको कॉन्फिस्केट करने का भी ऑर्डर किया है।
मुंबई में 5 मंजिला इमारत गिरी, कम से कम 21 लोगों की मौत।
मुंबई में पिछले 2 दिन बारिश का कहर बरपा रहा, पानी घरों में घुसा। आज जब तीसरे दिन धूप खिली, बारिश नहीं थी, लेकिन एक हादसे ने मुंबई का दिल दहल गया।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। गुरुवार को पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या के मामले में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित कर दिया। हत्या मामले से जुड़े मुकदमे में उनके शामिल न होने पर यह सजा सुनाई गई है। साथ ही 2 पुलिस अफसरों को लापरवाही बरतने के जुर्म में 17 साल की कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा 5 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। दक्षिण मुंबई के भाईखला इलाके में गुरुवार को जेजे मार्ग पर एक 5 मंजिला इमारत ढह गई। मुंबई पुलिस के मुताबिक घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। मुंबई पुलिस की प्रवक्ता रश्मि करांदीकर ने बताया कि 21 लोग जख्मी हुए हैं और राहत का बचाव कार्य जारी है। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने श्रम कानूनों में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव दिया है। नए नियमों के लागू होने के बाद ट्रेड यूनियनों की शक्ति में कमी आएगी और इससे कंपनियों को कर्मचारियों को भर्ती करने और उन्हें नौकरी से निकालने में सहूलियत हासिल होगी। कई बड़ी यूनियनों ने इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है।
Je veux vous expliquer aujourd'hui le sens et la portée d'une réforme ambitieuse.
इस सुधार का मतलब और असर को समझाना चाहता हूँ। ये बहुत महत्वाकांक्षी, संतुलित और पारदर्शी है। काम का अधिकार फ्रांसीसी समाज व्यवस्था का अभिन्न अंग रहा है और आगे भी रहेगा। इसका पहला काम है नौकरियों को बचाना, अलग थलग पड़ चुके लोगों को मुख्य धारा में लाना और रचनात्मक सामाजिक संवाद को बढ़ावा देना जो संतुलित और हर स्तर पर साफ सुथरा हो। ये थे प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप के शब्द। बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों ने बीबीसी को बताया है कि ऐसी आशंका है कि बीते हफ्ते 27,000 से अधिक रोहिंग्या मुस्लिम म्यांमार से बांग्लादेश में दाखिल हुए हैं। इनमें से अधिक संख्या महिलाओं और बच्चों की है। रखाइन प्रांत के गांवों में सैन्य कार्रवाई के बाद ये लोग म्यांमार से भागे थे। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराकी प्रधानमंत्री हैदर अल आब्दी ने घोषणा की है कि तथाकथित इस्लामिक स्टेट संगठन से तल अफर शहर को मुक्त करा लिया गया है। बीते दिनों तल अफर के नज़दीक अल अयादिया गांव में इराकी सेना और आईएस चरमपंथियों के बीच भयंकर लड़ाई देखने को मिली थी। आईएस के चरमपंथियों ने इस गांव में शरण ले रखी थी। हार्वे तूफान के बाद रेफ्रिजरेशन सिस्टम फेल होने के बाद अमरीका के टैक्सस के केमिकल प्लांट में 2 धमाके हुए। प्लांट के मालिक ने बताया है कि अगर प्लांट में बिजली नहीं रहती है तो इसके रसायन खतरनाक हो सकते हैं। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हमने धमाके की आवाज दूर से सुनी, जिसके बाद लपटें और धुआं हम दूर से देख सकते थे। ये थे स्थानीय नागरिक जॉन विलारियल के शब्द। उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्री ने बताया है कि दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने बताया है कि उत्तर कोरिया के ताज़ा मिसाइल परीक्षण के बाद उसके और अमरीकी लड़ाकू विमानों ने संयुक्त अभियान चलाया है। अधिकारियों ने कहा है कि इसमें 2 अमरीकी विमान शामिल थे। उत्तर कोरिया के परीक्षण के बाद अमरीका का यह पहला सैन्य कदम है। दक्षिण भारत में चेन्नई के नज़दीक 12 साल की एक लड़की ने सोमवार को कथित तौर पर स्कूल टीचर द्वारा माहवारी को लेकर अपमानित करने पर आत्महत्या कर ली। मृतक लड़की की मां ने बीबीसी को बताया कि उनकी बेटी को स्कूल में माहवारी आने पर टीचर ने क्लास के बाहर खड़ा कर दिया था। राजकुमारी डायना की 20वीं पुण्यतिथि पर आज लंदन के कैंसिंगटन पैलेस में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 20 साल पहले कार दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। बीबीसी समाचार।
BBC हिंदी से शाम की सभा दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर फेसबुक पर भी लाइव। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, मुंबई में एक 5 मंजिला इमारत गिरी है जिसमें कम से कम 21 लोग मारे गए हैं और कई अन्य जख्मी हुए हैं। इस खबर पर हम आएंगे कुछ ही देर के बाद। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं पाकिस्तान से, जहां पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या के मामले में अदालत ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले के पहलुओं पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले जानते हैं अदालत ने आज क्या फैसला सुनाया है। इस्लामाबाद से BBC संवाददाता शहजाद मलिक।
रावलपिंडी की जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है उसने साबिक प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के जो मर्डर केस है उसका आज फैसला सुनाया है, और ये फैसला तकरीबन 10 साल के बाद सुनाया गया है। जो फैसला आज सुनाया है एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज ने, उसके मुताबिक जो 5 जो अक्यूज थे जिनके बारे में पुलिस और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो उनकी ये कन्विक्शन थी कि ये बाकायदा तौर पर बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन में इन्वॉल्व हैं, उनको जो है उनके इनके खिलाफ सबूत जो थे वो नहीं थे और उनकी एक्विटल हो गई है, उनको रिहाई मिल गई है। और इन 5 जो मुलजमान थे जिनको जिनकी एक्विटल हुई है उनमें एक रफाकत है, एक हसनैन गुल है, अब्दुल रशीद है, एक शेर दिल है और एक एतराज शाह है। इनकी एक्विटल हो गई है, जबकि 2 पुलिस ऑफिसर जो जब बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी तो उस वक्त वो रावलपिंडी पुलिस के इंचार्ज थे, DIG साउद अजीज और SSP कुरम शहजाद, उनको जो है वो एक तो अबेटमेंट पे और दूसरा जो था वो नेग्लिजेंस पे उनको सजा सुनाई गई है, और ये सजा जो है वो 17-17 साल की कैद है और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना।
शहजाद साहब, ये बताइए कि इस मामले में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और जनरल रहे परवेज मुशर्रफ का नाम भी आ रहा था, उनके बारे में क्या कहा है अदालत ने, क्या फैसला सुनाया है?
जी, एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उन्हें बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन के केस में ऑब्सकेंडर करार दिया है, इश्तहारी करार दिया है, और इसके अलावा उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में उनको कॉन्फिस्केट करने का भी ऑर्डर किया है।
मतलब ये कि उनको भगोड़ा घोषित किया है और पाकिस्तान में उनकी जितनी भी संपत्ति है वो जब्त कर ली जाएगी।
जी बिल्कुल, ऐसा ही है। परवेज मुशर्रफ ये पहला केस नहीं है जिसमें वो भगोड़े करार दिए गए हैं अदालत की तरफ से। इसके अलावा जो उन्होंने मुल्क में इमरजेंसी लगाई थी 3 नवंबर 2007 को, उस केस में भी उनको भगोड़ा करार दिया गया है, और जो लाल मस्जिद पे जो गाजी अब्दुल रशीद उनका जो मर्डर केस था उस केस में भी ये ऑब्सकेंडर करार दिए गए हैं। इस तरह वो 3 ऐसे मुकदमात हैं जिनमें वो भगोड़े करार दिए गए हैं, और 2 मुकदमात में उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको कॉन्फिस्केट करने के ऑर्डर हुए हैं।
मलिक साहब, ये भी बताइए कि जब ये फैसला आने वाला था, फैसला आ गया, उसके बाद और उसके पहले और उस दौरान अदालत के बाहर आसपास किस तरह का माहौल था, आप वहाँ मौजूद थे?
जी बिल्कुल, क्योंकि जो 5 मुलजमान हैं जिनकी एक्विटल हुई है, जिनको रिहा किया गया है, उनके बारे में जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उनका ये कहना था कि चूंकि इनका ताल्लुक जो है वो जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ है, इसलिए इनको कोर्ट में तो नहीं लाया जा सकता। अलबत्ता कोर्ट जो है वो खुद चल के जेल में लगाई गई है, रावलपिंडी की अडियाला जेल में, वहां पर अदालत ने यह फैसला सुनाया और वहां पर सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम थे, और किसी लेमैन को, आम आदमी को, इवन के रिपोर्टर्स को भी, मीडिया पर्सन को भी कोर्ट के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। जब उन्होंने जज ने यह फैसला सुनाया तो उनका जो रीडर है उसने बाहर आके जो इस फैसले की तफसीलात हैं, जो डिटेल्स हैं, वो बाहर आके मीडिया के लोगों के साथ शेयर की थी।
शहजाद साहब, लगे हाथ ये भी बताते चलिए कि बेनजीर भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, उसने इस फैसला आने के बाद किस तरह से प्रतिक्रिया दी है, कैसे रिएक्ट किया है?
जी, अभी थोड़ी देर पहले जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि बेनजीर भुट्टो के बेटे भी हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट आया है और उन्होंने इस फैसले को ना सिर्फ ये इस पे मायूसी का इजहार किया है, उन्होंने कहा है कि हमें इस फैसले पे दुख है, और बल्कि साथ ये भी कहा है कि वो ये फैसला कबूल नहीं, उस वक्त तक ये कबूल नहीं करेंगे जबकि परवेज मुशर्रफ उसको इस मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाता और उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की जाती और उसके खिलाफ फैसला नहीं हो जाता, उस वक्त तक वो इस जो अदालती फैसला है इसको उनकी नजर में ये काबिले कबूल नहीं है उनके लिए।
ये थे BBC संवाददाता रावलपिंडी से शहजाद मलिक, और मैंने आपसे कुछ देर पहले इस्लामाबाद फ़ोन लगाया और वरिष्ठ पत्रकार एहतशामुल हक से ये जानना चाहा कि बेनजीर भुट्टो की हत्या के 10 साल बाद भी जज यदि ये कहें कि सबूत काफ़ी नहीं है इस मामले में अभियुक्तों को सज़ा सुनाने के लिए, तो इसका मतलब क्या ये है कि केस कच्चा कहाँ पड़ गया, कच्चा पड़ गया तो कहाँ पड़ गया, और सबूत कहीं हाथ से तो नहीं निकल गए?
بے نظیر صاحبہ جو ہے وہ قتل ہوتی ہیں 27 دسمبر 2007 کو, اور پھر مقدمہ جو ان کا شروع ہوتا ہے وہ 20 اگست 2013, یعنی 6 سال کے بعد یہ مقدمہ ان کا شروع ہوتا ہے, اور پھر بھی اس میں 10 برس لگتے ہیں اس میں فیصلہ آنے میں. تو جی یہ اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس عدالت کا یہ فیصلہ آیا ہے اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. اور سب سے اہم چیز اس میں یہ ہے جی کہ وہ کہانی ساری کی ساری گھومتی ہے, دو سابق ایس ایس پی ہیں جن کو 17-17 سال کی سزا دی گئی ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو مشرف کے زمانے میں ایس پی تھے پنڈی میں دونوں. تو یہ بات تو انڈائریکٹلی عدالت یہ مان رہی ہے کہ بھائی انہوں نے کیا, یہ ذمہ دار ہیں, اور باقیوں کو انہوں نے چھوڑ دیا 5 لوگوں کو, اور مشرف صاحب کو بکوڑا ڈکلیئر کر دیا. ان سو مینی ورڈ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ مشرف کا کیا طرح تھا, اور اس وقت کے لوگ بھی اور آج بھی بے شمار لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ مشرف کی اس وارننگ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بینظیر صاحبہ کو انہوں نے دی تھی کہ اگر وہ الیکشن سے پہلے پاکستان آتی ہیں تو اپنی موت کی وہ خود ذمہ دار ہوں گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی یہ انگلیاں کس طرف اٹھا رہی ہیں, اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جی جو ایک ریاست کا کام ہوتا ہے کہ اتنے ہائی پروفائل قتل کو جو ہے نا انویسٹیگیٹ کرانا, وہ نہیں کیا گیا. آپ دیکھیں اس حوالے سے یونائیٹڈ نیشن کے پاس بھی انویسٹیگیشن گئی.
بالکل 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 آپ نے صحیح کہا, سنیکت راشٹر نے اپنی جانچ رپورٹ میں یہ کہا تھا کہ بینظیر بھٹو کی سرکشا کے پریاپت انتظام نہیں کیے گئے تھے. یہ بتائیے کہ پاکستان میں عام لوگوں میں کیا دھارنا ہے اس پورے معاملے کو لے کر, وہ کس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں, وہ کیسے سوچتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں اسے؟
لیکن یہ عام آدمی کی اگر آپ بات کریں تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ایون وہ لوگ جو نظریاتی طور پہ کہا جاتا ہے کہ بینظیر کے یا پیپلز پارٹی کے خلاف بھی رہے, وہ بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اتنا عرصہ لمبا کھینچنے کے بعد پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا تو اس میں سے نکلا کیا. جو میجر پلیئر تھے جن کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ جی کیا ہے طالبان, بیت اللہ مسعود اس وقت ان کا لیڈر تھا, اس نے مروایا, جو یہی بات مشرف بھی کرتے رہے. پھر اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اور کرائے کے ٹٹو اکٹھے کیے گئے تھے ان کی طرف سے یہ ہوا ہے. تو لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں, سوائے اس کے کہ آپ کو یہ ایک دہشت گردی کی ایک کورٹ نے فیصلہ کیا ہے. وہ پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے اپیل میں, یعنی ہائی کورٹ میں جائے گا مسئلہ, پھر ایک اور اپیل بھی ہے سپریم کورٹ میں جائے گی. ٹریڈیشنلی ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہوتا ہے کہ ایک مقدمہ جو ہے نا وہ 20-30 سال لگ جاتے ہیں, اور خاص طور پہ وہ مقدمہ جس کے پیچھے راز ہوں, بڑے بڑے لوگ انوالو ہوں, وہ تو آپ دیکھیں کبھی سامنے ہی نہیں آتے. لہٰذا یہ تو بظاہر سب کچھ آئی واش لگتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے جی پیپلز پارٹی پر بھی الزام آ رہا ہے. پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے اس مسئلے کو اگر وہ چاہتے تو یہ مقدمہ اس وقت پورا ہو سکتا تھا, لیکن کہا جاتا ہے کہ اس وقت انہوں نے سیاسی مسئلے سے کام لیا. مشرف سے تو انہوں نے این آر او کروا لیا, صلح کر لی ان سو مینی ورڈ, لیکن یہ کہ مشرف کے بارے میں جو کہتے رہے کہ ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا انوالو ہے, ان کو نہیں چھیڑا.
حق صاحب, احتشام الحق صاحب, میں اسی بات پر آ رہا تھا کہ 10 سال بیت جانے کے بعد, 6 جج بدل جانے کے بعد, اتنی جانچ پڑتال کے بعد بھی جب عدالت میں جج یہ کہیں کہ ثبوت ناکافی ہیں, ثبوت کم پڑ گئے, کیا یہ ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں, ایسا بھی مان سکتے ہیں کہ ادھیکاری, جانچ ادھیکاری ثبوت جٹانے میں ناکام رہے, بفل ہو گئے, ٹھیک سے ثبوت نہیں جٹا پائے؟
اب جس طریقے سے پیپلز پارٹی کی حکومت کے بارے میں خاص طور پہ کہا جا رہا ہے, اگر وہ صحیح معنوں میں اس میں انٹرسٹیڈ ہوتے, اب دیکھیں نا انگلیاں کو اٹھانے والے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر ہی کچھ لوگ ہیں, ایون بینظیر صاحبہ کے جو ہسبینڈ ہیں آصف علی زرداری, ان کے بارے میں بھی کہا جاتا رہا کہ یہ وہ بھی ان کو مروانے میں شامل ہوں گے. اہم سوال یہ ہے کہ جی جس طریقے سے مقدمہ چلنا چاہیے تھا وہ نہیں چلا, جس طریقے سے بڑے بڑے لوگوں کو بچا دیا گیا, لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بڑے بڑے لوگ اس طرح قتل کر کے اور اسکاٹ فری چلے جاتے ہیں, ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے جن پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں, اور معمولی افسران کو پکڑ لیا جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہی چیز ہے کہ آپ لیاقت علی خان کا پہلا مرڈر ہوا تھا, اس سے لے کے بینظیر تک, اس کے بعد سے بھی جو بے شمار لوگ مارے گئے ہیں, سیاسی قتل ہوئے, ان کا کچھ سراغ نہیں ملتا. عدالتی نظام میں بہت زیادہ مسائل ہیں, مشکلات ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے بہت سارے راز ہیں جو شاید یہ ہسٹری میں لکھے جائیں گے, اور بتایا جائے گا کہ اصل ماننے والے قتل کرنے والے کون تھے, اور سزا جن لوگوں کو ہوئی کیا واقعی اس میں انوالو تھے نہیں تھے.
یہ تھے اسلام آباد سے ورشٹھ پترکار احتشام الحق.
دن بھر شارٹ ویو 41, 31 اور 25 میٹر بینڈ, یعنی 7,565, 9,510, 9,460, 11,795 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو 1,413 کلو ہرٹز پر.
امریکہ کے دکشنی حصے میں آئے چکرواتی طوفان ہاروی کے کارن اب تک کم سے کم 37 لوگ مارے جا چکے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو बाढ़ प्रभावित इलाके से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राहत और बचाव कार्य में सेना की मदद भी ली जा रही है। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
पिछले शुक्रवार को जब से चक्रवाती तूफान हार्वी टेक्सास प्रांत से टकराया है, टेक्सास और लुइजियाना के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। अब तक 37 लोगों के मारे जाने की खबर है। ह्यूस्टन में तूफान के कारण भारी तबाही हुई है। अधिकतर इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया है। हाईवे समेत शहर की कई सड़कें नदी का मंजर पेश कर रही हैं। अब तक 4 फुट से अधिक बारिश हो चुकी है, जो कि एक रिकॉर्ड है। ह्यूस्टन में हजारों घर सैलाबी रेले में बह गए। हजारों गाड़ियां सड़कों पर भरे पानी में फंसी हैं या डूब चुकी हैं। कई जगहों पर 10 फुट से अधिक पानी जमा हो गया है और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। अब भी कई इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। अब तक 70,000 से अधिक लोगों को बाढ़ के पानी से बचाया जा चुका है। ह्यूस्टन में बाढ़ग्रस्त इलाकों में कुछ लूटपाट की खबरों के बाद रात का कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। पुलिस चीफ आर्ट असिवेदो ने लूटपाट करने वालों को चेताया।
We take advantage of people and prey on them in these circumstances. That's despicable behavior.
जो लोग इन हालात का फायदा उठाकर आम लोगों को चोरी डकैती का निशाना बना रहे हैं, वो नहायत ही शर्मनाक काम है। लेकिन मैं उन लोगों को ये साफ कर दूं कि हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे और वो कानून से बच नहीं पाएंगे, और हम उन्हें सख्तरीन सजा दिलाने की भी कोशिश करेंगे। पुलिस चीफ के शब्द। रात के समय का कर्फ्यू रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा और इस कर्फ्यू को अनिश्चितकाल के लिए लगाया गया है। लेकिन राहत कर्मी और नौकरी पेशा लोगों को इजाजत होगी कि वो कर्फ्यू के समय भी आ जा सकते हैं। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट ने नेशनल गार्ड के 24,000 फौजी भी राहत और बचाव कार्य के लिए तलब कर लिए हैं। हार्वी तूफान एक बार टेक्सास प्रांत से टकराने के बाद दोबारा मेक्सिको की खाड़ी में चला गया और फिर टेक्सास के पूर्वी इलाके में टकरा गया, जहां पोर्ट आर्थर, लंबर्टन, बोमोंट और ऑरेंज जैसे छोटे शहरों वाले इलाके में भी भारी बारिश से कई इलाके डूब गए हैं। राहत और बचाव कार्य अब वहां भी तेजी से शुरू हो गया है। क्रॉसबी शहर के बाढ़ग्रस्त इलाके में एक रासायनिक प्लांट में धमाके के बाद कोई 2 दर्जन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हार्वी से अब तक करीब $110 अरब का नुकसान भी हो चुका है, जो अमरीकी इतिहास में सबसे ज्यादा है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्प्रिंगफील्ड मिजूरी में बोलते हुए हार्वी के कारण मरने वालों के परिवार वालों के साथ हमदर्दी जताते हुए कहा,
टू दोस अफेक्टेड बाय दिस स्टॉर्म वी आर प्रेइंग फॉर यू एंड वी आर हियर विद यू।
राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे थे कि वो अमरीकी जिन्होंने तूफान में अपने प्यारों को खोया है, आपके साथ सारा देश शोक मना रहा है। हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे दिल आपके साथ हैं। मंगलवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने टेक्सास के कुछ इलाकों का दौरा भी किया था। अब बाढ़ग्रस्त इलाकों में बारिश कम हो गई है, लेकिन अभी बाढ़ का पानी ग्रस्त इलाकों में कई हफ्ते जमा रह सकता है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
मुंबई में आज एक रिहायशी इमारत गिरने से कम 11 लोग मारे गए हैं, जो बढ़ते बढ़ते ताजा संख्या 21 पर आ पहुंची है और अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मुंबई से BBC संवाददाता मयूरूष कोन्नूर ने इस खबर पर और जानकारी भेजी है।
मुंबई में पिछले 2 दिन बारिश का कहर बरपा रहा, पानी घरों में घुसा। आज जब तीसरे दिन धूप खिली, बारिश नहीं थी, लेकिन एक हादसे ने मुंबई का दिल दहल गया। मुंबई के बीचों बीच भिंडी बाजार के नज़दीक पाकुड़िया स्ट्रीट के गली में एक बिल्डिंग थी हुसैनी नाम की, वो आज सुबह 8:30 के करीब गिर गई। करीब 6 मंजिला ये रिहायशी बिल्डिंग, जिसमें कहा जा रहा है कि 30 से ज़्यादा लोग रह रहे थे या फिर कुछ मकानें थी, वो मलबे में अटक गए हैं। फिलहाल सुबह से ये हादसा होने के बाद यहाँ पे फायर ब्रिगेड, NDRF की टीम भी बुलाई गई, पुलिस बहुत ज़्यादा तैनात है यहाँ पे, और उसी के साथ जो यहाँ के रहने वाले नागरिक हैं वो भी मदद के लिए सामने आए, और कुछ घंटों बाद भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी शुरू है। यहाँ से नज़दीकी जेजे अस्पताल है, वहाँ पे जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है उनको पुलिस ले जा रही है। अब तक कितनी मौतें हुई हैं और कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, कितने इंजर्ड हैं, वो पुख्ता जानकारी कुछ ही देर में ऑफिशियली हाथ में आएगी। अब तक वो नहीं आई है, लेकिन फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन ये जारी है और अगले कुछ घंटों तक ये जारी रहेगा। बहुत पुराना इलाका है ये मुंबई का, मुंबई के बीचों बीच है, या बहुत पुरानी इमारतें, कुछ 100 साल पुरानी इमारतें भी यहाँ पे थी, गली गली में है, इसलिए लोग यहाँ पे भीड़ हमेशा हुआ करती थी, और इसी वजह से
जब बारिश के बाद यह हादसा हुआ है तो यहाँ पे रेस्क्यू पहुँचने के लिए कुछ दिक्कतें आई, लेकिन जल्द ही यहाँ पे काम शुरू किया गया। कुछ स्थानीय लोगों से यहाँ पे हमने बात की तब पता चला कि जब बारिश हो रही थी तो वहाँ पे पानी भी भर चुका था और पानी आ रहा था। फिलहाल बीएमसी भी तफ्तीश कर रही है कि किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ है, पुलिस भी जानकारी अब तक ले रही है। लेकिन फिलहाल सब लोग जो है वो इकट्ठा आए हैं मदद करने के लिए, जो भी जिनको भी बचाया जा सकता है उनको बचाया जा रहा है और जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करने की तैयारी में सारे अफसर और सारे स्थानीय लोग भी हैं।
ये थे मयूरेश कोन्नूर, बीबीसी संवाददाता मुंबई से। और अब बारी है श्रोताओं की, आपकी चिट्ठियों की,
आपकी राय। नमस्कार स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह
इंदु पांडे।
इंदु पांडे का भी नमस्कार। इंदु पांडे के पास आज बिहार के अररिया से लिखी एक चिट्ठी सबसे ऊपर है और इसमें बाढ़ की विभीषिका का चित्रण हमारे एक श्रोता ने किया है।
जी, इनका नाम है शेख मुस्लिम। लिखते हैं कि डाक द्वारा भेजी गई चिट्ठी लेट हो जाती है, क्या करूं? देहात का रहने वाला हूं, ईमेल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्या लिखूं? दर्द की बात है।
दर्द की बात बिल्कुल है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से बाढ़ आई वहां इंसानों का पता नहीं, जानवरों का पता नहीं, खेत खलिहान सब डूब गए, शायद इसी का जिक्र किया है इन्होंने।
जी बिल्कुल, कहते हैं कि रोड बह गई, हर तरफ पानी ही पानी है। ऐसे में बीबीसी के नीरज सहाय जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने यहां से रिपोर्टिंग जो की है उसको कभी नहीं भुला सकेंगे हम।
बहुत बहुत धन्यवाद शेख मुस्लिम साहब। नीरज सहाय ने वाकई उन इलाकों में जाके तमाम लोगों से बात करके कम से कम ये तस्वीर श्रोताओं के सामने और अधिकारियों के सामने रखने की कोशिश की। पत्रकार इससे ज्यादा क्या कर सकता है।
बिल्कुल, अगली चिट्ठी ले हम।
आप अगली चिट्ठी लीजिए। मैं शेख मुस्लिम साहब से ये कहना चाहता हूँ कि भरोसा रखिए, हमें सुनते रहिए और दुख जो है वो टल जाता है, उसके बाद सुख आता है।
और ये हमारे पास अंतर्देशीय पत्र आया है बेलवा कटिहार बिहार से जयंत कुमार दास का। लिखते हैं कि 23 अगस्त के दिन भर में राजेश जोशी द्वारा कश्मीर से माजिद जहांगीर द्वारा भेजी गई रिपोर्टिंग जो है वहां के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जाबाज विधायक यूसुफ तारिगामी को सुना, जो काफी पसंद
आया। यूसुफ तारिगामी का इंटरव्यू हमने किया था और यूसुफ तारिगामी दक्षिण कश्मीर के उस इलाके से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक चुने जाते रहे हैं, चौथी बार चुने गए हैं, जहां जिसको बड़ा ट्रेडिशनली बहुत ही परंपरागत जमाते इस्लामी का गढ़ माना जाता है, तो इन्होंने शायद इसकी तारीफ की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और ये एक सुझाव भी देते हैं कि रेहान फैजल जी भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन पर एक विवेचना कर रहे तो बहुत अच्छा लगेगा।
लेकिन कई बार रेहान फैजल ने कम्युनिस्ट नेताओं पर विवेचना की है, हरकिशन सिंह सुरजीत पे की है, भूपेश गुप्त पे की है, तो ये अगर आप गौर से सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी।
और हमारे पास ये चिट्ठी है अभय कुमार निराला की बगेन बक्सर बिहार से। लिखते हैं कि आप ईमेल पोस्टकार्ड की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, मेरा लिफाफे पत्र को जो इन्होंने भेजी है उसका अनादर कर देते हैं।
आप तो लगातार हमें लिखते रहते हैं, आपकी चिट्ठियां लगातार शामिल भी होती हैं, और आज तो देखिए सिर्फ जो डाक से चिट्ठियां आई हैं वही इस्तेमाल हुई हैं अब तक, तो ये तो शिकायत आपकी वाजिब नहीं है।
आगे लिखते हैं कि हमारे यहाँ शाम के वक्त चौपाल लगती है, रेडियो श्रोता करीब 7 बजे से ही बीबीसी हिंदी के इंतजार में बैठे रहते हैं, प्रगतिशील रेडियो मंच के सभी श्रोतागण ध्यान से सुनते हैं और गुनते भी हैं।
देखिए ये सबसे बड़ी बात है, बहुत ही इन्होंने अच्छी बात कही है, ध्यान से सुनना तो महत्वपूर्ण है लेकिन उसे गुनना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जब बच्चे थे हमें यही कहा जाता था, पढ़ो, पढ़ो से पढ़ने से ज्यादा गुनना जरूरी है। जो प्रगतिशील रेडियो श्रोता संघ है उनके सभी सदस्यों को हमारी तरफ से मुबारकबाद दीजिए, हमारी तरफ से धन्यवाद कहिए कि आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और पसंद करते हैं।
और ये हमारे पास पोस्ट कार्ड आया है आरिफ आलम का, सहरगांव चंपारण, पूर्व चंपारण बिहार से। लिखते हैं कि बीबीसी सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे विवेचना हो या फिर कुछ भी।
अरे इसके अलावा भी तो कुछ लिखिए कि क्या कौन सा कार्यक्रम सुनते हैं। बहुत छोटी संक्षिप्त सी चिट्ठी लिखी है, पोस्टकार्ड लिखा है, लेकिन थोड़ा विस्तार से लिखिएगा तो अच्छा लगेगा।
और ये हमारे पास बहुत लंबी चिट्ठी आई है, रंग बिरंगी सी,
ये तीन पन्नों की चिट्ठी है और स्टेपल करके इन्होंने भेजी है लिफाफे से। नाम क्या है?
एक पाती आपके नाम, और इन्होंने अपना जो नाम है लिखा है भरत सिंह राठौर, रतलाम मध्य प्रदेश
से। हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, बहुत सजग श्रोता हैं, और अब देखिए इतनी लंबी चिट्ठी लिखी है कि इसको पढ़ पाना तो संभव नहीं है, इसलिए भरत सिंह राठौर जी अगली बार आप चिट्ठी लिखें तो बस 3 या 4 वाक्य में अपनी बात पूरी करने की कोशिश करें ताकि हम आपकी चिट्ठी शामिल कर पाएं।
और अब बारी है ईमेल की। विकास बोहरा ने ईमेल भेजा, लिखते हैं कि बीबीसी हिंदी रेडियो पिछले 20 साल से सुन रहा हूं और सुनने में परेशानी अब हो रही है।
देखिए, मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूं अपने श्रोताओं से, जो ईमेल से चिट्ठियां भेजें अपना नाम, गांव का नाम और या शहर का नाम, ज़िले का नाम लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप कहाँ हैं, कहाँ हमें सुनते हैं, कहाँ आपको साफ सुनाई देता है और कहाँ सुनने में परेशानी होती है। सुनने में परेशानी की बात जहाँ तक है, वो एक तरह से स्थायी भाव हो रहा है कई इलाकों में, सब इलाकों में नहीं, लेकिन अभी इस वक्त हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे श्रोता ये भी लिखते हैं कि आज आपका कार्यक्रम सुना, बहुत ही स्पष्ट सुनाई दिया, तो हमको आप स्पेसिफिक बताएं बिल्कुल साफ साफ कि किस इलाके में कौन कार्यक्रम किस मीडियम वेव पे या शॉर्ट वेव में कहां पर नहीं सुनाई देता है, तब हम उसकी थोड़ी कुछ दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे।
सत्यप्रकाश आर्य ग्रेटर नोएडा से इन्होंने हमें पहली बार चिट्ठी लिखी है, बस इतना ही बोला है। और कपिल बत्रा है बहरीन से, लिखते हैं कि कुछ साथी अपने नाम के अलावा श का अस्तित्व ही भूल गए हूं।
मतलब वो स और श के उच्चारण पर, बहुत ही कपिल बत्रा साहब महत्वपूर्ण बात पहले भी कह चुके हैं, अब की बार भी कह रहे हैं, और इन्होंने शायद, अगर मैं चिट्ठी में मैंने पढ़ी है, कुलदीप मिश्र और सरोज सिंह की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उनका शीन काफ दुरुस्त है जैसे उर्दू में कहते हैं और हिंदी में उच्चारण स्पष्ट है।
यदि आप इस पत्र की पावती दें तो धन्यवाद।
पावती हो गई और आपका पत्र शामिल भी हो गया। इन्होंने आगे लिखा कि जिंदगी यूं ही चलती रहेगी। जिंदगी तो हस्ब मामूल चलती ही रहेगी। कपिल बत्रा साहब, आप लिखते रहिए। हमारा पता एक बार फिर नोट कर लीजिए, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और ई मेल लिखना चाहें अपने पते के साथ, hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
चिट्ठियों के बाद इंदु पांडे खेल की खबरें लेकर स्टूडियो में हाजिर हैं। आज क्या हलचल है खेल के मैदानों में, बताइए
जी। अमेरिकी ओपन टेनिस के पुरुष और महिला सिंगल्स में कई उलटफेर हुए हैं। पुरुष सिंगल्स में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव क्रोएशिया के बोना कोरिच से दूसरे राउंड में संघर्षपूर्ण मुकाबले में हार गए। कनाडा के डेनिस शोपोवालोव ने 8वीं वरीयता प्राप्त जो विल्फ्राइड सोंगा को लगातार सेटों में हराकर तीसरे राउंड में प्रवेश किया। महिला सिंगल्स में दो बार फाइनल में पहुंचने वाली कैरोलिन वोजनियाकी रूस की एकतरीना माकारोफा से हार गई, लेकिन दो बार की विजेता वीनस विलियम्स और नशीले पदार्थ का सेवन करने के कारण लगी रोक के बाद लौटी मारिया शरापोवा तथा तीसरी वरीयता प्राप्त गार्बाइन मुगुरुजा तीसरे राउंड में पहुंच गई। भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना आज डबल्स मुकाबले में अपना अभियान शुरू करेंगे। महिला डबल्स में सानिया मिर्जा अपनी चीन की जोड़ीदार पेंग शुआई के साथ क्रोएशिया की पेट्रा मिर्टिच और डोना कोविच की जोड़ी से खेलेंगी। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और श्रीलंका के बीच चौथा एक दिवसीय क्रिकेट मैच कोलंबो में खेला जा रहा है।
विराट कोहली की धमाकेदार पारी
जी, और भारत ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया। प्रेमदास स्टूडियो में, भारत और श्रीलंका के बीच इस चौथे वनडे में अगर देखा जाए तो पूर्व भारतीय कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के लिए बहुत खास है, क्योंकि ये उनका 300वां वनडे मैच है। भारत सीरीज में 3-0 की बढ़त के साथ सीरीज अपने नाम कर चुका है। भारतीय टीम इस मैच में 3 बदलाव के साथ उतरी है। तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर अपने वनडे करियर की शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें डेब्यू का मौका मिला है। इसके अलावा चाइना मैन बॉलर कुलदीप यादव और मनीष पांडे को टीम में मौका दिया गया है। विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर 219 रनों की साझेदारी की और भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 375 रन बनाए।
क्रिकेट के अलावा और क्या है आपके पिटारे में आज?
ताजा रैंकिंग की अगर हम बात करें तो टीम इंडिया के स्पिनर रविंद्र जडेजा ने निलंबन के कारण श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टेस्ट में नहीं खेल पाने के बावजूद आईसीसी की टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। भारतीय टीम के चेतेश्वर पुजारा, कप्तान विराट कोहली ताजा टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों में क्रमशः अपने चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। हालांकि युवा बल्लेबाज लोकेश राहुल एक पायदान खिसक कर 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं। और बैडमिंटन की अगर हम बात करें तो भारत की स्टार शटलर और विश्व चैंपियनशिप में रजत विजेता पीवी सिंधु का विश्व रैंकिंग में चौथा स्थान कायम है।
बहुत शुक्रिया, खेल समाचार सुना रही थी इंदु पांडे। और अब भारत में थोड़ी देर में बजेंगे रात के 8, वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन अब सुनेंगे चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर हमारे नए साथी मोहम्मद शाहिद से।
बीबीसी समाचार। आज पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या के मामले में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित कर दिया। हत्या मामले से जुड़े मुकदमे में उनके शामिल न होने पर यह सजा सुनाई गई है। आज दक्षिण मुंबई के भयखला इलाके में जेजे मार्ग पर एक इमारत ढह गई। मुंबई पुलिस के मुताबिक घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने श्रम कानून में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव दिया है। नए नियमों के लागू होने के बाद ट्रेड यूनियनों की शक्ति में कमी आएगी। बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों ने बीबीसी को बताया है कि ऐसी आशंका है कि बीते हफ्ते 27,000 से अधिक रोहिंग्या मुस्लिम म्यांमार से बांग्लादेश में दाखिल हुए हैं। इराकी प्रधानमंत्री हैदर अल आब्दी ने घोषणा की है कि तथाकथित इस्लामिक स्टेट संगठन से तल अफर शहर को मुक्त करा लिया गया है।
दिन भर में आज इतना ही। हमारा अगला प्रसारण नमस्कार भारत कल सुबह भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।